एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान।
आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों में उतर रहे हैं जो लिखा तो गया करीब 2000 साल पहले,
जी हाँ, 2000 साल पहले।
लेकिन जिसकी बातें आज भी मतलब उतनी ही ताज़ा और ज़रूरी लगती हैं। हम बात कर रहे हैं तिरुकुरल की।
हाँ, महान तमिल संत और कवि तिरुवल्लुवर की रचना।
बिल्कुल। और इस सफ़र में हमारे गाइड होंगे थॉमस हिटोशी प्रुएक्समा, जिन्होंने इसका एक बहुत ही शानदार अंग्रेज़ी अनुवाद किया है, द कुरल।
जी, और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो जैसे जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक तरह का नक्शा है।
सही कहा।
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कितनी भूमिकाएं निभाते हैं ना, घर पर, दफ्तर में, समाज में, और हर भूमिका के अपने लक्ष्य होते हैं।
बिल्कुल।
तिरुकुरल हमें इन्हीं भूमिकाओं को समझने में और उनके लक्ष्यों को नैतिकता और कुशलता से पाने में मदद करता है।
हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि 2000 साल पुराना ज्ञान आज की इस मल्टीटास्किंग जिंदगी में कैसे फिट बैठता है। तो चलिए पहले इस अनुवादक के बारे में जानते हैं, थॉमस हिटोशी प्रुएक्समा। सुना है वो कोई पारंपरिक अकादमिक प्रोफेसर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, और शायद यही बात उनके काम को खास बनाती है। प्रुएक्समा एक अमेरिकी कवि हैं, लेखक हैं, अनुवादक हैं।
अच्छा।
उनकी पृष्ठभूमि थोड़ी अलग है। उन्होंने कई साल दक्षिण भारत में बिताए, मदुरई शहर में,
ओ
और वहां सिर्फ तमिल भाषा नहीं सीखी उन्होंने, बल्कि वहां की संस्कृति, वहां का संगीत, खासकर कर्नाटक संगीत, उसको जिया है, महसूस किया है।
वाह, तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है,
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अनुभव उनके अनुवाद में साफ झलकता है।
तो ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं हुआ, ये तो एक संस्कृति और अनुभव का अनुवाद हुआ।
सही कहा, और क्योंकि वो खुद एक कवि हैं, तो उन्होंने तिरुकुरल की आत्मा को पकड़ने की कोशिश की है। उसकी जो संक्षिप्तता है, जो लय है, और जो गहरे अर्थ हैं, वो इसे सिर्फ एक नीति शास्त्र की किताब की तरह नहीं देखते।
एक काव्य रचना की तरह देखते हैं।
हाँ, बिल्कुल, एक काव्य रचना की तरह। उनका लक्ष्य था कि कुरल का जो एसेंस है, जो उसकी ध्वनि है, वो अंग्रेजी कविता में भी महसूस हो। वो सच में दो दुनियाओं के बीच एक पुल बना रहे हैं, प्राचीन तमिल ज्ञान और आज के पाठक के बीच। ये सिर्फ अनुवाद नहीं है, ये एक तरह का सांस्कृतिक संवाद है।
बहुत खूब। तो चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं। तिरुकुरल है क्या असल में? जैसा हमने कहा, इसमें लगभग 1330 छोटे दो पंक्ति वाले दोहे हैं।
जी, कुरल कहते हैं उन्हें।
हाँ, कुरल। और ये 130 अध्यायों में बटे हैं, हर अध्याय में 10 कुरल।
बिल्कुल, और कमाल की बात यह है कि ये सारे कुरल जीवन के तीन मुख्य हिस्सों पर, या कह लीजिए कि जीवन के तीन प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं।
अच्छा, कौन से तीन लक्ष्य?
हाँ, ये तीन खंड हमें जीवन की अलग अलग भूमिकाओं को समझने में मदद करते हैं। पहला है अरम।
अरम।
हाँ, अरम यानी धर्म, सदाचार, नैतिकता। ये हमारी व्यक्तिगत भूमिका और उसके नैतिक लक्ष्यों की बात करता है, मतलब सही तरीके से कैसे जिएं।
ठीक है, व्यक्तिगत भूमिका और नैतिकता। दूसरा?
दूसरा है पोरुल,
पोरुल।
यानी अर्थ, धन, सांसारिक मामले, शासन। ये हमारे सामाजिक और पेशेवर भूमिकाओं से जुड़ा है, दुनिया में प्रभावी कैसे बने, सफल कैसे हों, लेकिन नैतिक रूप से।
अच्छा, तो प्रैक्टिकल दुनिया की बात। और तीसरा?
और तीसरा है इनबम,
इनबम।
यानी काम, प्रेम, आनंद। ये हमारी निजी और भावनात्मक भूमिकाओं से जुड़ा है, खासकर रिश्तों से।
प्रेम और आनंद,
हाँ, प्रेम और आनंद के लक्ष्यों को कैसे समझें और निभाएं।
तो ये तो जीवन का एक पूरा खाका हो गया, व्यक्तिगत नैतिकता, सामाजिक सफलता और निजी रिश्ते।
बिल्कुल, प्रुएक्समा का अनुवाद यही दिखाता है कि यह सिर्फ उपदेश नहीं है, बल्कि एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल दर्शन है।
और इसकी सबसे बड़ी खूबी शायद इसकी यूनिवर्सल अपील है ना?
निश्चित रूप से, ये किसी खास धर्म से बंधा नहीं है, इसलिए आप देखिए जैन, बौद्ध, हिंदू, यहां तक कि ईसाई समुदाय के लोग भी इसे सदियों से सम्मान देते आए हैं। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी अलग अलग भूमिकाओं को, मतलब ईमानदारी और सार्थकता से निभाना चाहता है, अपने जीवन के लक्ष्यों को पाना चाहता है।
ठीक है, तो अब इन तीनों खंडों अरम, पोरुल और इनबम में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं नींव से, अरम यानी सदाचार।
जी, अरम।
ये हमारी व्यक्तिगत भूमिका और उसके नैतिक आधार की बात करता है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत ईश्वर की स्तुति और बारिश के महत्व जैसे विषयों से होती है।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये दिखाता है कि व्यक्ति की नैतिकता कहीं ना कहीं ब्रह्मांडीय व्यवस्था और प्रकृति के सम्मान से जुड़ी है।
फिर बात आती है बुनियादी सद्गुणों की, जैसे करुणा, जिसे अक्सर अहिंसा कहा गया है।
अहिंसा?
हाँ, सत्यनिष्ठा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और खास तौर पर आत्मसंयम। ये वो गुण हैं जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाते हैं ताकि वो अपनी बाकी भूमिकाएं ठीक से निभा सके।
तो इस खंड का लक्ष्य है एक मजबूत नैतिक चरित्र बनाना।
सही।
और ये सिर्फ अंदरूनी गुणों तक सीमित नहीं है, अरब में घरेलू सद्गुणों पर भी काफी जोर है।
घरेलू सद्गुण जैसे?
जैसे कृतज्ञता, दूसरों की मदद को याद रखना, उसे मानना, मेहमान नवाजी, अतिथि का सत्कार करना, और मधुर वाणी, सोच समझकर प्यार से बोलना।
मीठी बोली, हाँ ये तो बहुत जरूरी है।
ये गुण हमारी पारिवारिक भूमिका को मजबूत करते हैं। फिर इसके साथ ही आंतरिक शुद्धि पर जोर देने वाले गुण भी हैं, जैसे क्रोध पर नियंत्रण रखना।
ओ, ये तो बहुत मुश्किल है।
बल्कि विचारों से भी।
विचारों से भी?
हाँ, तिरुवल्लुवर कहते हैं कि ये गुण सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है, बल्कि हर गृहस्थ और नागरिक के लिए जरूरी है। सच्ची ताकत बाहरी नहीं, अंदरूनी अनुशासन और सहानुभूति में है। यही हमारी व्यक्तिगत भूमिका का मूल लक्ष्य है, एक शांत और नैतिक मन।
ये तो हुई व्यक्तिगत और नैतिक भूमिका की बात। अब आते हैं दूसरे खंड पोरुल पर, जो अर्थ, धन और सांसारिक मामलों से जुड़ा है।
जी, पोरुल।
ये हमारी सार्वजनिक, सामाजिक और पेशेवर भूमिकाओं की बात करता है। और यहाँ की सलाह तो भाई आज के लीडर्स और मैनेजर्स के लिए भी सीधी गाइडबुक लगती है।
इसमें कोई शक नहीं, नेतृत्व और शासन पर कमाल के अध्याय हैं इसमें। एक अच्छे नेता या राजा, या आज के जमाने में कहें तो सीईओ या मैनेजर, उसमें क्या गुण होने चाहिए?
हाँ, क्या गुण?
तिरुवल्लुवर गिनाते हैं, ज्ञान, सीखने की ललक, साहस, सही सलाह सुनने की क्षणता, न्यायप्रियता और अपनी टीम या लोगों तक आसान पहुंच, मतलब एक्सेसिबल होना।
वाह, ये तो बिल्कुल आज की लीडरशिप थ्योरी लगती है।
है ना, ये सीधे सीधे लीडरशिप के लक्ष्य तय करते हैं।
लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये गुण जैसे साहस, न्यायप्रियता, आज की जटिल राजनीति या कॉर्पोरेट दुनिया में हमेशा प्रैक्टिकल होते हैं? मतलब कभी कभी नैतिक रास्ता मुश्किल या धीमा नहीं हो सकता? क्या कुरल इस तनाव कर बात करता है?
ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुरल आदर्शवादी जरूर है, लेकिन पूरी तरह से अव्यवहारिक नहीं है। वो मानते हैं कि चुनौतियां आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन उनका जोर इसी बात पर है कि लंबे समय में सफलता और सम्मान नैतिक रास्ते पर चलकर ही मिलते हैं।
अच्छा।
वो ये भी बताते हैं कि सही मंत्रियों या सलाहकारों का चुनाव कैसे करें, जानकारी या सूचना तंत्र का महत्व क्या है, जिसे वो जासूसी कहते हैं, और न्याय व्यवस्था कैसे निष्पक्ष रहे। ये सब व्यवहारिक कदम है।
हाँ, ये तो प्रैक्टिकल बातें हुई।
ये सब नैतिक लक्ष्यों को पाने में मदद करते हैं। तो ये सिर्फ क्या करें नहीं, बल्कि कैसे करें भी बता रहा है।
समझ गए।
बिल्कुल, इसमें आर्थिक सिद्धांत भी हैं, धन कमाने के नैतिक तरीके क्या हैं, धन का सही उपयोग कैसे हो, कृषि और व्यापार का महत्व, टैक्स कैसे हो जो जनता पर बोझ न बने।
टैक्स पर भी?
कमाल है।
हाँ।
यहाँ तक कि सैन्य रणनीति पर भी बात है, लेकिन हमेशा नैतिकता के दायरे में। तो ये खंड दिखाता है कि हमारी पेशेवर और सामाजिक भूमिका का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना या ताकत हासिल करना नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक योगदान देना और नैतिक रूप से सफल होना है। इसमें दोस्ती कैसी हो, नागरिक के कर्तव्य क्या हैं, इन पर भी जोर है, जो हमारी सामाजिक भूमिका को परिभाषित करते हैं।
तो अरम ने व्यक्तिगत भूमिका का आधार बनाया, पुरुल ने सार्वजनिक और पेशेवर भूमिका के लक्ष्य और तरीके बताए। अब आते हैं तीसरे खंड इनबम पर, काम, प्रेम और आनंद।
जी, इनबम।
ये हमारी निजी और भावनात्मक भूमिका से जुड़ा है। आपने कहा ये खंड सबसे छोटा है और शायद सबसे ज्यादा काव्यात्मक भी।
हाँ बिल्कुल, इसका अंदाज और इसकी बनावट बाकी दो खंडों से एकदम अलग है। इसे अक्सर दो प्रेमियों के बीच संवाद या उनकी भावनाओं के इजहार के रूप में लिखा गया है।
अच्छा, डायलॉग फॉर्म में?
हाँ, कुछ वैसा ही। ये प्रेम के अलग अलग चरणों और भावनाओं को दिखाता है। पहला हिस्सा है प्रेम की शुरुआत का, पहली नजर, आकर्षण, मिलने की तड़प, छिप छिप कर मिलना, पकड़े जाने का डर। इसमें प्रकृति के खूबसूरत रूपकों का बहुत इस्तेमाल है।
और दूसरा हिस्सा?
दूसरा हिस्सा विवाहित प्रेम की गहराई और जटिलताओं पर बात करता है। और यहाँ कुरल बहुत यथार्थवादी है, बहुत रियल है। इसमें सिर्फ आदर्श प्रेम की बातें नहीं है।
अच्छा,
मतलब इसमें असली जिंदगी का प्यार है, जुदाई का दर्द, रूठना मनाना, जिसे तमिल में उडल कहते हैं, बड़ा प्यारा शब्द है।
उडल?
हाँ, उडल। और फिर गहरे अपनेपन का सुकून। ये खंड प्रेम को जीवन की एक जरूरी और सुंदर भूमिका के रूप में स्वीकारता है, जिसके अपने भावनात्मक लक्ष्य हैं, खुशी, संतोष और गहरा जुड़ाव।
तो इन तीनों खंडों को मिलाकर देखें तो तिरुकुरुल जीवन की लगभग हर भूमिका, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, पेशेवर और भावनात्मक, सबको छूता है और उसके लिए नैतिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन देता है। कमाल है।
बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से कुछ खास विषय या संदेश उभर कर आते हैं। पहला तो यही है, एक समग्र जीवन का विचार, इंटीग्रेटेड लाइफ।
इंटीग्रेटेड लाइफ कैसे?
कुरल जीवन को टुकड़ों में नहीं देखता। हमारी अलग अलग भूमिकाएं, कर्मचारी, पति या पत्नी, नागरिक, दोस्त, ये भले ही अलग हों, लेकिन उनके पीछे का नैतिक आधार यानी अरम वो एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दफ्तर में मतलब बेईमान हो और घर पर ईमानदार होने का दावा करें। कुरल इस आधुनिक सोच को चुनौती देता है, जहां हम काम और निजी जीवन को बिल्कुल अलग रखने की कोशिश करते हैं।
हाँ, ये बात तो सोचने वाले है कि हमारी नैतिकता हर जगह एक सी होनी चाहिए।
बिल्कुल। दूसरा अहम संदेश है सार्वभौमिक नैतिकता और करुणा, यूनिवर्सल एथिक्स और कंपैशन।
हाँ, ये आपने पहले भी कहा था।
जी, कुरल के नैतिक सिद्धांत किसी एक धर्म पर आधारित नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों पर टिके हैं। करुणा, सच्चाई, न्याय, कृतज्ञता, अहिंसा पर बहुत जोर है। सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि शब्दों और विचारों से भी चोट न पहुंचाना।
शब्दों और विचारों से आज के जमाने में ये कितना जरूरी है। सोशल मीडिया पर देखिए या रोज की बहस में।
बिल्कुल। आज के ध्रुवीकृत समाज में, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह कठोर भाषा इतनी आम हो गई है, ये बहुत प्रासंगिक है।
तीसरा पहलू जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है आदर्शवाद और व्यावहारिकता का संगम, प्रैग्मेटिज्म और आइडियलिज्म का मेल।
हाँ, ये कुरल की खूबी है। वो ऊंचे नैतिक लक्ष्य रखता है, जैसे हमेशा सच बोलना, लेकिन साथ ही उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए व्यावहारिक रास्ते भी सुझाता है।
जैसे?
जैसे शासन के लिए सही सलाहकार चुनना, व्यापार में ईमानदारी रखना। ये सिर्फ ख्वाब नहीं दिखाता, बल्कि जमीन पर चलने का तरीका भी बताता है। ये हर भूमिका के आदर्श, लक्ष्य और उन्हें पाने के व्यावहारिक तरीके दोनों पर बात करता है।
वाणी का प्रभाव यानी शब्दों की ताकत, ये भी एक अहम विषय है ना?
हाँ, बिल्कुल। पावर ऑफ स्पीच। तिरुवल्लुवर बार बार कहते हैं कि शब्द बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मीठे, सच्चे और उपयोगी वचन बोलने पर जोर है।
और कठोर शब्दों से बचने की सलाह।
हाँ, चुगली और बेकार की बातों से बचने की सलाह है। ये हमारी हर भूमिका में जरूरी है, चाहे वो लीडर हो, दोस्त हो या परिवार का सदस्य।
और आखिर में जीवन के हर पहलू और हर भूमिका का सम्मान।
जी, डिग्निटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कुरल किसी एक जीवन शैली को दूसरे से बेहतर नहीं मानता। गृहस्थ का जीवन भी उतना ही सम्मानित है जितना एक सन्यासी का।
किसान को भी महत्व दिया है।
हाँ, किसान समाज की रीढ़ है। प्रेम और मानवीय इच्छाएं भी सम्मान के योग्य हैं। हर भूमिका का अपना महत्व है और अपना लक्ष्य है।
कुरल में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो सीधे दिल पर असर करती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं।
हाँ।
जैसे ज्ञान के लक्ष्य पर एक विचार है, प्रुईक्ष्मा के अनुवाद में उसका भाव कुछ ऐसा है कि वह ज्ञान जो दुनिया के काम ना आए, उस सुंदर फूल की तरह है जिसमें सुगंध ना हो।
वाह, कितनी गहरी बात है। ज्ञान सिर्फ इकट्ठा करने के लिए नहीं है।
हाँ, उसे बांटना है, इस्तेमाल करना है दूसरों की भलाई के लिए।
और नैतिकता की मजबूती पर यह पंक्ति देखिए, समझदार लोग वो काम कभी नहीं करेंगे जिससे नेक लोग गलत मानते हैं, भले ही उन्हें अपनी माँ को भूखा क्यों ना देखना पड़े।
हो हो, ये तो बहुत बड़ी बात है,
है ना? ये दिखाता है कि नैतिक सिद्धांतों पर टिके रहना कितना जरूरी है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। ये हमारी व्यक्तिगत भूमिका की सीमाओं को एकदम साफ कर देता है।
और वाणी के प्रभाव पर वो सीधी सी बात कितनी सच लगती है। भाले से लगा घाव भर सकता है, पर जीभ से मतलब कठोर वचन से लगा घाव कभी नहीं भरता।
हाँ, कितनी सच्ची बात। आज भी हम रोजमर्रा की बातचीत में इसका अनुभव करते हैं। कड़वे बोल कितनी गहरी चोट पहुंचाते हैं।
बिल्कुल।
और उदारता पर ये विरोधाभास देखिए, जो दूसरों के दुख को अपना समझ कर देते हैं, उनका धन कभी कम नहीं होता,
है ना? ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है।
नहीं, ये दिल की अमीरी की बात है। देने से ही सच्ची समृद्धि आती है, और ये हमारी सामाजिक भूमिका का एक अहम लक्ष्य है।
तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन सवाल वही है कि इन 2000 साल पुराने विचारों को हम अपनी आज की जिंदगी में अपनी अलग अलग भूमिकाओं में कैसे उतारें, जैसे व्यक्तिगत विकास के लिए क्या कर सकते हैं।
देखिए, शुरुआत आत्मनिरीक्षण से हो सकती है, जैसे आत्मसंयम, खासकर गुस्से पर काबू पाना। क्या हम रोज थोड़ा वक्त निकालकर सोच सकते हैं कि आज हमने अपनी भावनाओं को कैसे संभाला?
मुश्किल है, पर कोशिश तो कर सकते हैं।
हाँ, और कृतज्ञता का अभ्यास, दिन के अंत में उन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो हमारे पास हैं।
ये अच्छी आदत है।
और बोलने से पहले वो 3 सवाल पूछना, क्या ये सच है, क्या ये जरूरी है, क्या ये दयालु है। ये छोटे छोटे कदम हमारी व्यक्तिगत भूमिका को मजबूत करेंगे।
और पेशेवर जीवन में एक मैनेजर या टीम मेंबर के तौर पर
वहाँ भी कुरल के सिद्धांत बहुत काम आ सकते हैं। नैतिक नेतृत्व, क्या आप अपनी टीम के साथ न्यायपूर्ण और पारदर्शी हैं?
हाँ, ये जरूरी है।
सही सलाह सुनना, क्या आप फीडबैक के लिए खुले हैं या सिर्फ अपनी ही चलाते हैं? स्पष्ट और सम्मानजनक संवाद, क्या आप अपनी बात बिना किसी को ठेस पहुंचाए कह सकते हैं?
सही है।
ये सब गुण न सिर्फ आपको एक बेहतर पेशेवर बनाते हैं, बल्कि आपके काम करने की जगह को भी बेहतर बनाते हैं। ये आपकी पेशेवर भूमिका के लक्ष्यों को पाने में मदद करते हैं।
और रिश्तों में, परिवार में या प्रेम संबंधों में,
कुरल हमें पारिवारिक भूमिका में मेहमान नवाजी, बड़ों का आदर और बच्चों के सही पालन पोषण की याद दिलाता है। प्रेम संबंधों में यह हमें सिखाता है कि रूठना मनाना, उतार चढ़ाव, ये सब सामान्य है।
हाँ, वो उड़ल हाली बात।
बिल्कुल, अहम बात है साथी की भावनाओं को समझना और सम्मान देना। ये हमारी भावनात्मक भूमिका के लक्ष्य यानी गहरे और संतुष्ट रिश्ते को पाने में मदद करता है।
और आखिर में समाज के प्रति हमारी भूमिका।
कुरल हमें एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्ती निभाना, समुदाय की मदद करना, सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखना। आज के माहौल में दूसरों की बात धैर्य से सुनना, बिना पूरी जानकारी के किसी की आलोचना न करना, ये छोटे छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं।
सही कहा।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक ये है कि तिरुकुरल जैसे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीज नहीं है, वो जिंदा है, वो आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं।
बिल्कुल,
ये जीवन की अलग अलग भूमिकाओं को समझने और उनके लक्ष्यों को नैतिकता, सफलता और प्रेम के साथ संतुलित करने का एक अद्भुत खाका है। और प्रोक्सिमा का काव्यात्मक अनुवाद इस खजाने को हम तक बहुत खूबसूरती से पहुंचाता है।
और मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित इस बात ने किया कि ये कितनी संतुलित किताब है। इसमें गहरी नैतिकता भी है और दुनिया में जीने की व्यावहारिक समझ भी है। ये किसी खास भूमिका या व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी सभी भूमिकाओं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, पेशेवर, सामाजिक, को सार्थक और संतुलित तरीके से निभाना चाहता है। ये वाकई यूनिवर्सल ज्ञान है।
हाँ, और तिरुवल्लुवर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी आंतरिक स्थिति, हमारे गुण, हमारा आत्मसंयम, हमारी करुणा यानी अरम, हमारी बाहरी भूमिकाओं और सांसारिक लक्ष्यों पोरुल और इन्बम को हासिल करने के लिए कितनी जरूरी है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां बाहरी उपलब्धियों पर इतना जोर है, हम अपनी आंतरिक स्थिति और बाहरी लक्ष्यों के बीच ये संतुलन कैसे बना सकते हैं? क्या हम अपनी अलग अलग भूमिकाओं में सामंजस्य बिठा पा रहे हैं या वो एक दूसरे के साथ टकराव में है? इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।